हरि तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ। नारायण 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 नारायण। केनोपनिषद के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो सृष्टि का मूल है और सब प्राणियों के अहम के रूप में जो विद्यमान है और जगत के रूप में भी जो विद्यमान है। एक होता है विद्यमान और एक होता है वर्तमान। वर्तमान उसको कहते हैं जो वर्तता माने बदलता रहता है, और विद्यमान उसको कहते हैं जो होता है बदलता नहीं है। तो संसार जो है जगत, ये तो वर्तमान है, ये तो बदलता रहता है, और ये जो आत्मदेव है ये विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। होता नहीं है या हो सकता नहीं है? तो अगर होता नहीं है और हो सकता है तो कल को बदल जाएगा, तो ये भी विनाशिता की ओर चला जाएगा। जो भी परिवर्तनशील वस्तु है वो अंत में विनाशी अवश्य होगी। तो संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक विद्यमान है और एक वर्तमान है। जगत वर्तमान है, आत्मा विद्यमान है, और ब्रह्म विवर्तमान है। विवर्तमान माने ना कुछ हुआ ना हो रहा, ना कुछ हो वलहार, कभी उसमें विद्यमानता दिखलाई पड़ती है, कभी वर्तमानता दिखलाई पड़ती है, कभी सांप दिखाई पड़ता है तो कभी माला दिखाई पड़ती है, लेकिन रज्जू तो कुछ होती नहीं है ना। तो जो अल्टीमेट ब्रह्म है उसकी दृष्टि से तो ये सब विवर्तमान, ब्रह्म तो विवर्तमान है और माया ये वर्तमान है, बदलती हुई रहती है। और ये आत्मदेव जो साक्षी के रूप में है ये विद्यमान है, अगर ये भी वर्तमान हो जाए तो साक्षी नहीं रह सकते। अरे भाई, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन को एक ही व्यक्ति देखेगा तब ना कहेगा कि ये बदल के ये हो गया। जिसने बालक देखा है वही जब जवान को देखता है, उसी को जब वो बुढ़ा देखता है, तो वही व्यक्ति जिसने ये सब देखे हैं वो कहता है भाई तुम्हारा शरीर तो बदल रहा है। तो बदलने का साक्षी कौन होगा अगर साक्षी भी बदल जाएगा तो? इसलिए आत्मा साक्षी जो है वो बदलता नहीं है, फिक्स्ड स्टार की तरह से, पोल स्टार जिसको बोलते हैं, ध्रुव तारा, वो अपनी जगह रहता है। और ये सप्तऋषि जो हैं ये उसका चक्कर काटते रहते हैं। ये सप्तऋषि कौन से हैं नारायण? पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि। ऋषि शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो ये ज्ञान के साथ ही करण है, पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन और बुद्धि। सप्त, तो सप्तऋषि जो हैं ये इस आत्मा के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये ध्रुव तारे के समान स्थिर रहता है। जब ये बात सुन ली, समझ में भी आ गई, बस समझ में भी आ गई, तो नारायण सबको बड़ी जल्दी रहती है कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। और हो गए इतनी बात नहीं, डिक्लेयर भी करना चाहते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो यहीं से ये प्रश्न उठाते हैं कि शिष्य से गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या तुझे ब्रह्मज्ञान हो गया? बोले हो गया महाराज। तो बोले बाबरे, अभी नहीं हुआ। अब किसी से कह दो ना कि नहीं हुआ तो बुरा मानता है वो। इसलिए महाराज श्री कहते थे कि हम लोग कह देते हैं कि हाँ हो तो गया है, लेकिन अभी अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। तो बोले अदृढ़ अपरोक्ष कुछ नहीं होता है, अज्ञान का जो अ है ना उसी को अदृढ़ में लगा दिया है। अदृढ़ अपरोक्ष का मतलब है कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान ही है। मगर अगर ये कह दो कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान है, तो नाराज हो जाएगा वो। तो कहते हो तो क्या है लेकिन अभी अदृढ़ है, दृढ़ नहीं। अरे दृढ़ क्या होगा, या तो तुम आत्मा हो या नहीं हो, तीसरी बात तो कुछ बीच में है ही नहीं इसमें। तो विचार सागर वगैरह में ये ज्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, दृढ़ अपरोक्ष और अदृढ़ अपरोक्ष। तो फक्कड़ महात्मा इस बात को नहीं मानते हैं, या तो आप अज्ञानी हो या तो आप ज्ञानी हो, बीच में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा थोड़ा अज्ञान हो गया, ओम नमो नारायण। एक सज्जन हैं अभी जिंदा हैं, तो उन्होंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी हमको ज्ञान तो हो गया, अब क्या करें हम। तो महाराज जी बोले अभी तो कई बार होगा। मतलब ये भ्रम जो है ये बार बार होता है कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, नारायण हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो कहते हैं तुमने मेरी बात पर ख्याल किया कि नहीं। अच्छा एक और चक्कर है, ये जितने खास तौर से उपासक संप्रदाय हैं ये सब डराते रहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में तो घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो महर्षि प्रवचन में अपने में ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हो सकता है। अहंकार उस वस्तु का होता है जो वृत्ति के अंतर आ जाती है चीज। अब मैंने मान लो पुस्तक ये पढ़ ली, अच्छी तरह से पढ़ ली, जान ली, तो इसका तो अभिमान हो सकता है कि मैं इस पुस्तक का ज्ञाता हूं। लेकिन क्या वृत्ति में ब्रह्म आ सकता है? अनंत ब्रह्म एक सीमित वृत्ति में कैसे घुस सकता है? तो ब्रह्म में तो वृत्ति में आने की योग्यता नहीं है नारायण, और वृत्ति में ब्रह्म को जानने की योग्यता नहीं है, वो तो फट जाएगी। जानने जाएगी तो स्वयं फट जाएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का कोई अभिमान नहीं होता है, ये सिर्फ डराने के लिए है। भगवान करे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मालूम पड़ जाएगी कि हम घमंडी हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो शिष्य ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हां जी हो गया मुझे ब्रह्म ज्ञान। बोले खूब अच्छी तरह से मालूम है ना कि हां मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, अभी आप कहो तो 10 आदमियों को बैठा दो, मैं अभी समझा दूंगा। तो कहते हैं कि यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम ये जानते हो कि मैंने इस ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया तो नहीं जान, क्योंकि मैंने तो तुमको ये बताया था कि ब्रह्म तो विदित और अविदित दोनों से परे है। तो तुमने अच्छी प्रकार से जान लिया का मतलब तुम्हारी वृत्ति में ब्रह्म आ गया, जो कि आ नहीं सकता। ये ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। आप शब्द जरा देखना, ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। का को पकड़ना है इसमें, सिर्फ ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति होती है। ब्रह्म का ज्ञान का मतलब है कि वृत्ति के पेट में ब्रह्म आ गया, जो कि आ नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं समझा, तुम जाओ फिर विचार कर। बोले नहीं गुरुजी, मैंने अपनी आत्मा को भी ब्रह्म जान लिया, और ये जो देवता लोग हैं ना, अधिदैव पक्ष जितना है, इनमें भी मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, मैं जानता हूं। अब रह गया अधिभूत, तो अध्यात्म और अधिदैव के बीच में ये अधिभूत है जगत, तो बोले ये भी ब्रह्म है, ये मैंने जान लिया। तो कहते हैं अभी और विचार करो, तुम्हारा विचार जो है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमे वापि नूनम, निश्चय रूप से तुमने अभी बहुत थोड़ा जाना है। त्वं वेत्स ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु, जो तुम अध्यात्म में ब्रह्म को जानते हो, माने मैं आत्मा ब्रह्म हूं ये जानते हो, और ये देवताओं में जितने जीव हैं ये सब ब्रह्म हैं, सभी संसार में प्राणी जो हैं वो ब्रह्म हैं, यदि तुमने ऐसा जानते हो अध्यात्म और अधिभूत और अधिदैव, तो अभी तुम ठीक तरह से नहीं जानते हो। इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि अन्य रूप से जानते हो कि स्वरूप से जानते हो कि अन्य और स्व इनके भेद से रहित रूप से जानते हो। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, ऐसे जानते हो तो भेद सहित ही जाना। और एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, ये जाना। अभी तो यही जाना है कि मैं भी ब्रह्म हूं तो सी भी ब्रह्म, सी भी ब्रह्म नारायण। तो अथनु मीमांस्यम एव ते, अभी तेरे लिए तो मीमांसा करनी शेष है। शिष्य चला गया। अब विचार करने लगा कि गुरुजी मुझे कहां से हटाना चाहते हैं। अगर सही शिष्य है तो नारायण वो गुरुजी में दोष दृष्टि नहीं करेगा, वो कहेगा कुछ ना कुछ गलती मेरी पकड़ी होगी, उसे ढूंढ के निकालूं और ठीक करूं। तो यहां भाष्यकार लिखते हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा कि उसके हाव भाव से, उसके बोलने के ढंग से ये मालूम पड़ता था कि अभी इसने ठीक ठीक नहीं जाना। इसमें दृष्टांत भी देते हैं कि जैसे इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास ब्रह्मज्ञान के उपदेश के लिए गए थे, छांदोग्य में ये कथा आती है, तो बोले कि कैसे आए कि आत्मा का उपदेश कीजिए। बोले अभी 32 वर्ष हमारे आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करके रहो। 32 वर्ष तक पूछा ही नहीं क्यों आए हो ना, सेवा कार्य में लगा दिया। और ब्रह्मचर्य का मतलब खाली वीर्य रक्षा को ही ब्रह्मचर्य नहीं बोलते, समस्त भोगों से उपरांता को ब्रह्मचर्य बोलते। बोले खाने को बहुत अच्छा मिल रहा है, सोने को बहुत अच्छा मिल रहा है नारायण, तो चलो यहीं पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसे नहीं, खाने को भी नहीं है, सोने को भी नहीं है, लेकिन हमें तो वो चीज चाहिए जो गुरुजी से प्राप्त होगी, तो 32 वर्ष तो निकाल दिए। बोले अब महाराज उपदेश करो, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी आंख में जो पुरुष है वही ब्रह्म है। अब दोनों जने चल दिए वहां से। तो इंद्र से विरोचन ने पूछा कि मेरी आंख में कौन सा पुरुष है, देखियो भाई। तो बोले इसमें तो मेरी छाया दिख रही है। बोले तू देख मेरी आंख में कौन सा है, तो वो कह रहा मेरी छाया दिख रही है। बोले अरे गुरुजी ने ये कहा कि ये जो शरीर है यही ब्रह्म है। बस ठीक है, मैं तो जाता हूं और अपने साथियों को बताऊंगा कि ये शरीर ही ब्रह्म है, इसी की खूब सेवा पूजा करो, इसको मोटा करो, भोग दो। तो वो तो नारायण विरोचन जो था वो तो चला गया। अब इंद्र को ये बात जची नहीं, वो फिर लौट करके आ गया। उन्होंने कहा महाराज ये तो ठीक नहीं है, आपत्ति दर्ज की। गुरुजी ने कहा भी 32 वर्ष और रहो। अब 32 वर्ष के बाद फिर पूछा उन्होंने कि आप बताइए। तो बोले ये जो स्वप्न में दिखलाई पड़ता है यही ब्रह्म है। अब कहा तो ये था कि जो स्वप्न को देखता है वो ब्रह्म है। वो भाषा उनकी ऐसी थी कि जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो बोले स्वप्न में तो मैं ये शरीर रूप से ही दिखता हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां खा रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर जो है उसको ये ब्रह्म बता रहे हैं। वो चल दिया फिर वापस। फिर रास्ते में उसने विचार किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्न में तो डर भी लगता है और भी सब गड़बड़ शड़बड़ होती है, तो सूक्ष्म शरीर अगर आत्मा हो तो इन सब की क्या संगत होगी। तो कुछ और मतलब है गुरु जी का, ये नहीं हो सकता। फिर लौट के आ गया, आपत्ति दर्ज की, बोले 32 बरस अभी और रहो। छान में बरस हो गए ना, बोले अब बताइए। तो बोले जो सुषुप्ति में सुषुप्ति को देखता है वो ब्रह्म है। अब फिर चला गया, अब वो फिर विचार करने लगा कि सुषुप्ति तो अभाव की स्थिति है, वहां तो कुछ पता ही नहीं चलता है, ऐसे आत्मा को लेकर क्या करेगा कोई। फिर लौट के आया, बोले अभी 5 बरस और रहो, 32 या 96 और 5, 101 बरस तक नारायण तपस्या कराई, तब आत्मा ब्रह्म है ये उपदेश दिया और तब इंद्र की समझ में आया। तो कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी से शिष्य ने कह दिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारे ये दोष जो हैं स्वभाव के, यदि ये पूरे नहीं ठीक हुए हैं और फिर तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो वो सिर्फ जबानी जमा खर्च हुआ है, अभी वास्तविकता नहीं है। तो कोई कोई तो एक ही गुरु से 10 शिष्य होते हैं, कोई तो ठीक जान लेता है, कोई विपरीत जानता है, कोई बिल्कुल ही नहीं जानता है। उसी के उसमें ये दृष्टांत दिया है इंद्र विरोचन के केस में जैसा हुआ। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि अभी तुम और करो, तुम्हारे कषाय पक जाएंगे, तब तुम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होगे। तो उनकी आज्ञा मान करके वो नारायण एकांत में चला गया और एकांत में जाकर के ये शब्द भाष्य के जो है ये स्मरण रखने लायक है, इसलिए सुना रहा हूं। एवं आचार्योक्तः शिष्य एकांते उपविष्टः समाहितः सन् यथोक्तम् आचार्येण आगमम् अर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभावम् कृत्वा। इतने पापड़ बेले एकांत में बैठ करके। अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि टाइम से अपना बिजनेस चालू कर दें, या जो भी जो काम करता है सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है नारायण दिमाग को, ये करना है, वो करना है, वो करना है। एकांत सेवन करने के अलावा इस तत्व को सही हृदयंगम करने का और कोई उपाय नहीं है। वो बात दूसरी है कि कोई कितने दिन एकांत में रहता है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये अलग बात है, वो तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। लेकिन जिसको फुर्सती नहीं है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ये कर लूं, वो कर लूं, यो मेरा नाम हो जाए, यो मेरा फलाना हो जाए, तो तुम ब्रह्म ज्ञान को क्या फायदा है तुम्हारा उससे। ये तो बिना ब्रह्म ज्ञान के भी कर ही रहे हो और कर ही सकते हो, ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा। तो कहते हैं कि आचार्य के इस प्रकार कहने से शिष्य जो है वो एकांत में जाकर के बैठ गया, एकांते उपविष्ट और समाहित सन। अब वहां जाकर के उसने अपने चित्त को एकाग्र किया, एकाग्र का मतलब एक ही विषय में लगाया। तो कितने घंटे लगा सकते हो एक ही विषय में, ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे उसी में लगाए रखता रहा, लेकिन जब दूसरा काम नहीं है तो घूम फिर करके उसी में लगेगा। थोड़ी देर लग गया, फिर आपने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, फिर उसी में लग गए, तो वो यही माना जाता है कि बीच में भी उसी में लगे रहे। तो समाहितः सन् यथोक्तम आचार्येण, आचार्य के द्वारा जैसा कहा गया था, आगमम अर्थतो विचार्य। आगम के शब्द नहीं रटे, आगम क्या बताया था कि विदित से परे है और अविदित से परे है। तो ये शास्त्र का जो वचन है इसके अर्थ के में बुद्धि को ढाला, उसका विचार करके और तर्कतश्च निर्धार्य, और तर्क से भी उसका निर्धारण किया। केवल मान मनोवल की बात नहीं, विरोधी तर्कों को शांत करो और जो उसके सहयोगी तर्क हैं उनको स्वीकार करो, और स्वानुभावम कृत्वा, और फिर जैसा बताया है वैसा ही अपने को जच गया। ये अनुभव अनुभव जो कहते हैं ना, ये अनुभव माने जचना ही है। मुझे अनुभव है इस बात माने मैं इसको सही समझ गया। कोई विशेष मुझे अनुभव हो जाएगा उसका नाम अनुभव है, ऐसा वेदांत में नहीं मानते हैं। क्योंकि विशेष तो सब मरा हुए हैं, सब मरते हैं, जो सामान्य है वही शेष रहता है। बस ऐसा ही है, ऐसा ही हूं, ऐसा ही है, यही शास्त्र का निश्चय है। अब कोई आके वो देखो आजकल साइंस वालों ने ये कहा है वो भी तो ठीक है, बोले हाँ ठीक है, काट सको तो काटो लेकिन अनुभव के विरुद्ध तो स्वीकार मत करो। तब फिर वो आचार्य के पास आए, आचार्य सकाशम उपगम्य उवाच। अब वो आकर के कहने लगा मन्ये विदितम गुरुजी, अब मैं कह सकता हूं कि मुझको ज्ञान हो गया, मैंने जान लिया। ये नहीं बोल रहा, पहले तो ये कह रहा था कि मैं जान गया, अब कह रहे हैं कि मैं विदित मन्ये विदितम, मैंने जैसा है वैसा जानता हूं। बोले फिर वहीं आ गया, जानता हूं। तो स्पष्ट करते हैं कि नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। ये दो तीन श्लोक जो हैं इसके ये बहुत गंभीर हैं। अब आज तो चूंकि हमको समापन ही करना है इसका, तो संक्षेप से इनके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराज नाहम मन्ये सुवेदेति, पहले मेरे से भूल हो गई थी कि मैं अच्छी तरह जान गया, तो अब मैं कहता हूं कि नाहम मन्ये सुवेदेति, मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझे अच्छी तरह से जान गया। माने तर्क वो सॉरी वृत्ति में ब्रह्म नहीं आ सकता, ये मुझे ठीक तरह से ज्ञात हो गया। अरे मैं ही हूं तो वृत्ति में क्या आएगा, मेरी वृत्ति है कि वृत्ति के बाद मैं हूं, वृत्ति के सामने मैं हूं कि वृत्ति के पीछे मैं हूं, वृत्ति का साक्षी मैं हूं कि वृत्ति से मैं जाना जाऊंगा। जब साक्षी हूं तो वृत्ति जो है उसको कैसे पकड़ सकती है, अपने मूल में वृत्ति जाकर के लीन हो जाएगी, पकड़ नहीं सकती उसका। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने उसको अच्छी प्रकार से जान लिया, लेकिन यदि आप ये कहो कि फिर तो तैने जाना ही नहीं, तो नो न वेदेति वेद च, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं। और गुरुजी क्षमा करना, आपके जितने शिष्य हैं इस पाठशाला में उनमें से यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान होगा तो ऐसे ही बोलेगा कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता। भाई क्यों ऐसे क्यों बोलेगा कि वृत्ति का विषय नहीं है, इसलिए तो बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूं और स्वयं हूं, इसलिए ये कहने में भी क्या हर्ज है कि मैं जानता हूं। नारायण, लेकिन इसका ढोल पीटने के लिए नहीं है ये, ये तो कोई जिज्ञासु हो शिष्य हो तो उसके सामने कह दो कि हाँ भाई ऐसा है, महाराज जी तो इसका एक्टिंग करके बताते थे। बोले जब शिष्य कहे कि महाराज आज तक किसी ने जाना भी है? बोले वेदाहम देखो मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, तो इससे क्या होगा कि शिष्य के मन में यह विश्वास हो जाता है कि जब गुरुजी को हुआ है तो हमको भी हो ही जाएगा। लेकिन सबके सामने थोड़ी बोलते हैं, जो अश्रद्धालु होगा उसके लिए तो कहेंगे ठीक है भाई, हाँ हमारे गुरुजी को तो था, अभी हम तो ऐसे ही हैं। हरिओम। तो जो भी हम आपके शिष्यों में से बोलेगा वो ऐसा ही बोलेगा जैसा मैं बोल रहा हूं। नारायण। एक इसमें वाक्य और है, एवं आचार्येण विचाल्यमानोपि शिष्यो न विचचाल। गुरुजी ने खूब हिलाया उसे, क्या ठीक ठीक देखें हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो हिलने में आया नहीं, विचलित नहीं हुआ वो। अन्यदेव तदविदितात् अथो अविदितादति इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मना। शिष्य जो है वो गुरु जी के सामने जाकर के गर्जना करते हुए बोला, ऐसे हैं मैं प्रकट नहीं है, मैंने आदर के सहित तो बोला मगर उसमें ये नहीं था कि कहीं संशय हो। जगर्ज गर्जना करने लगा। गर्जना तभी करता है आदमी जब अपने पक्ष में उसको निस्संदेह होता है। तो यहां बात तो उतनी है कि गुरु वाक्य हो, संप्रदाय से पुष्ट हो, शास्त्र से उसका पुष्टि हो, अपने अनुभव में आ जाए और तर्क के विरुद्ध न हो। जो ज्ञान जीवन में से संबंध नहीं रखता, देखो माफ करना जरा ये थोड़ी हट करके बोल रहा हूं मैं, जो ज्ञान जीवन से संबंधित नहीं है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। जब ब्रह्म एक ही है तो उसमें ये विभाग नहीं हो सकता है कि ये जीवन है और ये मैं हूं और ये मोक्ष है और ये फलाना है और ये फलाना। तो जब विभाग खत्म हो जाता है तब असली ब्रह्म ज्ञान होता है ना। तो इसके लिए ये कहा ना, उपपत्ति अनुभव बलाच्च। उपपत्ति भी होना चाहिए, तर्क से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तर्क माने दृष्टा हेतु दृष्टांत कार्य कारण से विरुद्ध नहीं हो जाना चाहिए। बोले हम तो हम ब्रह्मज्ञानी हैं, नहीं खाएंगे तो भी तो हम मरने से थोड़ी डरते हैं ना। वो कोई गुरुजी ने कहा सब ब्रह्म है तो शिष्य जी आगे चल दिए जान करके, सामने से हाथी आ रहा था महावत चिल्ला रहा था हाथी बावला है मतवाला है हट जाओ सामने से। बोले मैं भी ब्रह्म हूं तू भी ब्रह्म है आ जा भैया। अब वो हाथी तो आया ही, उसने सूंड में उठाया उसे पटक दिया, हड्डी पसली टूट गई। गुरुजी के पास पहुंचा, महाराज जी तो आपका ब्रह्म ज्ञान। अरे बोले जब मैंने ये कहा था कि सब ब्रह्म है तो महावत ब्रह्म नहीं था, हाथी ब्रह्म था बस महावत भी तो चिल्ला रहा था कि हट जा हट जा हट जा, तो क्यों नहीं हटा तू। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, बहुत सुना होगा। तो कॉमन सेंस नॉलेज जो है उससे आप अलग नहीं हो सकते। व्यवहार 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 को साधे रखना चाहिए, व्यवहार का और परमार्थ का कोई विरोध नहीं है। वो तो थोड़े दिन जैसे कि एग्जामिनेशन देते हैं तो बच्चे लोग टीवी देखना बंद कर देते हैं, ताश खेलना बंद कर देते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, फिर जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं फिर वही करने लगते हैं। तो साधन काल में थोड़ा सा ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, अब जो छूट गया तो वो तो छूट ही गया, उसे बार बार छोड़ो पकड़ो की बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई उसको पकड़े हुए है तो कहें कि तू तो अज्ञानी है, तू तो जो है बिल्कुल नरक में जाएगा और तू संसार में जा रहा है, ये तत्वज्ञानियों का काम नहीं है नारायण, ये दृष्टि भी तत्वज्ञानियों की नहीं, सब परमात्मा में ही खेल रहे हैं। अब ये दो श्लोक इसमें ऐसे हैं जो इस अध्याय के सार हैं। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। पहली है बल्कि एक तरह से, यस्य अमतम तस्य मतम, परमात्मा के बारे में जिसका अमत है असल में उसी का मत है। तो मत किसको कहते हैं? बुद्धि का जो कर्म है उसको मति के कर्म को मत बोलते हैं, यानी बुद्धि में जो बात आती है उसको मत बोलते हैं। अब उसे जब हमने ये कह दिया कि हां ऐसा ही है तो वो हमारा मत बन गया, संप्रदाय बन गया रहा। तो ये संप्रदायवादी लोग जो हैं जिस ढंग से ब्रह्म को प्रस्तुत करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ओम यस्य अमतम तस्य मतम, जो कहता है कि ब्रह्म एक मत के ही भीतर सीमित है, नारायण उसने भी ब्रह्म को जाना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सब मत एक ही जगह पहुंचाते हैं, आजकल जैसे ये प्रथा चल रही है ना कि सारे मत एक ही जगह पहुंचाते हैं, तो एक जगह तो नहीं पहुंचाते हैं लेकिन अल्टीमेटली एक जगह पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनमें दोष दृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है। हां आपको वो मत नहीं सुहाता है तो दूसरा मत जो सुहाता है उसको पकड़ के आगे बढ़िए, लेकिन जो उसी को ठीक मानते हैं उनके प्रति द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं। यस्य अमतम तस्य मतम, और मतम यस्य, और जिसने ब्रह्म को एक मत में बांध कर रख दिया है नारायण, न वेद सह, वो तो उस ब्रह्म को जानता ही नहीं। अविज्ञातम विजानताम, जो विजानताम है माने जो तत्वज्ञानी है, उनका तो कहना है कि ब्रह्म अविज्ञात है। जरा शब्द इसमें ऐसे ही हैं, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। अविज्ञातम विजानताम, विजानताम माने जो ज्ञानी है नारायण, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है अर्थात जाना नहीं गया। ये तो उल्टी बात है, विजानताम भी है और ये भी कह रहे हैं कि हम ब्रह्म जानने में नहीं आता है। तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वो वृत्ति का विषय नहीं बनता है, क्योंकि वो विदित और अविदित इन दोनों से परे है। वृत्ति में तो वही वस्तु आती है जो कि या तो विदित हो और या तो अविदित से विदित में आना चाहती हो। अब इस समय हम अमेरिका थोड़ी दिखाई दे रहा है यहां बैठ करके, तो अभी तो अविदित है वो, लेकिन आप हवाई जहाज से चले जाओ वहां तो आपकी वृत्ति में आ जाएगा, वो विदित हो जाएगा। तो क्या ब्रह्म ऐसा ही है कि कभी आता है कभी नहीं आता है? तो कहते हैं कि जो विजानताम है, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, वो तो कहते हैं कि अविज्ञातम, वो कभी वृत्ति में आएगा ही नहीं, वो तो विदित और अविदित दोनों का साक्षी स्वरूप से नित्य विराजमान है, इस रूप से वो जानने में आता है। और विज्ञातम अविजानताम, और जो कहते हैं कि ब्रह्म जानने में आ गया नारायण, वो तो अविजानताम है, अज्ञानी है। इसका मतलब है कि उन्होंने वृत्ति से ही ब्रह्म को जाना है, जो कि संभव नहीं है। अच्छा, वृत्ति की शांति से जान सकते हैं क्या? वृत्ति से तो नहीं जान सकते, लेकिन मान लो वृत्ति ठप हो जाए तो क्या जान सकते हैं? क्या बचेगा वृत्ति जब शांत हो जाएगी। अब सुषुप्ति में वृत्ति शांत हो जाती है तो वृत्ति में इदम रूप से जब शांति होती है, माने यह जब स्फुरित नहीं होता है तो मैं भी तो स्फुरित नहीं होता है, वहां कौन किसको जानेगा दार? यह और मैं दोनों एक साथ उदय होते हैं और एक साथ ही शांत होते हैं। इसलिए वृत्ति ठप कर दो तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये कम से कम वेदांत शास्त्र तो इसको नहीं स्वीकार करता। विज्ञातम अविजानताम, अब कहते हैं कि फिर हम ब्रह्म को साक्षात अनुभव कराओ गुरु जी, आज 7 बजे बंद करना है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो बोले कि ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम मतम, अरे ब्रह्म को तुम वृत्ति को ठप करके क्यों जानना चाहते हो, हर एक वृत्ति में वही तो स्फुरित हो रहा है। प्रतिबोध माने बोधम, बोधम प्रति अर्थात प्रत्येक बोध में वही ज्ञान स्वरूप तो स्फुरित हो रहा है, विषय के रूप में, विषयी के रूप में, करण के रूप में। ज्ञान के अतिरिक्त आपकी वृत्ति में है क्या? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं बोलने वाला, मैं जीभ मेरी, नारायण शब्द मेरे, इसी प्रकार से कान आपके, शब्द आपके, इस समय नारायण सुन जानने वाले आप ही हो। तो आप तो सिर्फ उस ज्ञान को पकड़ो जो आपके कानों में तो श्रोता और श्रव्य इत्यादि के रूप में बना हुआ है और मेरे में वक्ता और वक्तृत्व आदि के रूप में बना हुआ है, ज्ञान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रत्येक बोध में नारायण ये परमात्मा ही विलसित हो रहा है। कोई अवस्था विशेष में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो तुम संसार के भगोड़े हो, एस्केपिज्म है ये। एक प्रतिबोध का अर्थ, दो अर्थ किए हैं भाष्यकार ने, एक प्रतिबोध का अर्थ किया है जागरण, जगना। अभी हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? जग रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामने इंद्रियों के विषय सब मालूम पड़ रहे हैं, इसीलिए ना। अच्छा, जब सपने में देखते हो तो जग रहे हो कि सो रहे हो? तो वहां जो है, वहां भी यही सब देखते हो जो जागृत अवस्था में देख रहे हो, लेकिन वहां ऐसा तो नहीं है कि आप जाग रहे हो, उठ के तो यही कहते हो मैं सो गया था भाई, ऐसा ऐसा सपना देखा। तो नेचर जो है वो जागृत और स्वप्न की एक ही है, अन्य रूप से जब मालूम पड़ता है तो कभी उसे जागृत बोलते हैं, कभी उसे स्वप्न बोलते हैं। तो जगना क्या है? बोले जगना यह है कि अपने वास्तविक स्वरूप में जग जाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका जो शांकर भाष्य है, गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है ये, इसका शांकर भाष्य पढ़ना चाहिए ना। वो कहते हैं सब भूतों की जो रात्रि है वही तत्व ज्ञानी का दिन है। या निशा सर्वभूताराम तस्याम जागृत संयमी, और जो सब भूतों का दिन है वो तत्व ज्ञानी की रात्रि है। तो ये मतलब नहीं है कि जब सब लोग सो जाएंगे तब तत्व ज्ञानी जागता रहेगा, ना रहेगा। तो वह भाष्यकार लिखते हैं कि संसारी आदमी परमात्मा की परवाह नहीं करता है, वो तो आत्मा परमात्मा को अन्यथा सिद्ध मानते हैं। अरे क्या जरूरत है इसकी, आत्मा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम तो हैं ना, क्या जरूरत है जानने की। इसको शास्त्र में अन्यथा सिद्ध बोलते हैं, बेकार की जो चीज होती है तो अन्यथा सिद्ध मानते हैं नारायण। तो ये उनकी रात, परमात्मा उनके लिए रात्रि के समान है। उसी परमात्मा में तत्वज्ञानी लोग जागते हैं, और जो उनके लिए दिन है, दिन क्या है, कमाओ खाओ भोगो ये करो वो करो नारायण, ये सब उनके लिए दिन है, इसी में वो मगन रहते हैं। तो तत्व ज्ञानी के लिए वो रात्रि है। इतना अंतर है तो जगना क्या हुआ फिर, कि अपने तत्व ज्ञान के स्वरूप में जगना, इसी को जगना बोलते हैं। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, ये कारिका है। ये जीव जो है अनादि माया से सोया हुआ है, जब ये जग जाता है तब वो अपने स्वरूप में उसे मालूम पड़ता है। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, क्या है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, तब उसे ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो अजन्मा हूं, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, अजम अनिद्रम, मैं कोई सपना वपना नहीं देखता हूं नारायण, मेरे में कोई अज्ञान नहीं है। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, उसे बस उस समय अद्वैत तत्व का बोध हो जाता है। तो ये जगना कैसे होता है, तो बोले गुरुजी जब जगा में तभी जगना होता है नारायण, अपने आप तो नहीं जगता है। अपने आप तो जहां जिस रट में पड़ा हुआ है आदमी उसी रट में घूमता रहता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, यदि जग गए तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, माने मरने का जो भ्रम है वो निवृत्त हो जाता है। और आत्मना विन्दते वीर्यम, अच्छा कोई जबरदस्ती आपको मुक्त कर सकता है क्या, कितना भी पावरफुल शक्तिपाती क्यों ना हो वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। आत्मना विन्दते वीर्यम, लेकिन यदि आप अपने आत्मस्वरूप को जान जाएंगे तो ऐसी विल पावर आप में पैदा हो जाएगी कि फिर उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। विद्या विन्दते अमृतम, और ये ब्रह्म विद्या इससे क्या होगा, बोले इससे तो अमृतत्व में जो बाधा है वो दूर होती है। अरे हम जब अमृत स्वरूप हैं ही तो हम जानते क्यों नहीं है, कोई ना कोई तो रुकावट है ना, उस रुकावट को यदि दूर करना है तो उसके लिए तो सत्संग महात्मा का करना पड़े। और यदि हमें यह जानना है कि मैं नित्य मुक्त हूं तो केवल उसकी बात को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, विचार करके अनुभव पर्यंत उसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये मत कहो कि परमात्मा कहीं छिपा हुआ है, वो तो हाजिर हजूर है नारायण। प्रतिबोध विदितम, वो प्रत्येक बोध में वही प्रकट हो रहा है, आप सिर्फ पहचानते नहीं हैं। अब कोई आदमी की तलाश हो, प्राय ऐसा होता है, आदमी की तलाश हो और वो आदमी सामने भी बैठा हो, यहां भी मान लो कोई बैठे हो और हमें उसकी तलाश हो, मगर जब पहचान नहीं है तो सामने होने पर भी वो पकड़ में नहीं आता। पहचाना कि प्राप्त हुआ, तो आत्मा का तो यही हाल है कि पहचान लिया तो आप मुक्त हो, नहीं पहचाने तो चल ही रहा है। अब अंतिम बात बोलते हैं, समय भी हो रहा है, कि ये जो आपको जीवन मिला है ये किस लिए मिला है। यही चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न वेदिहा चेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। ये जीवन आपको इसीलिए मिला है, अगर ये प्राप्त हो गया तब तो जन्म सफल है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है नारायण। अगला जीवन कौन सा मिलेगा? आजकल तो लोग ठोक बजा कर कहते हैं नहीं हम आदमी बनेंगे, लेकिन हमारा शास्त्र तो ऐसा ठोक बजा के नहीं कहता है, वो तो कहता है जैसे तुम्हारे कर्म है वो ही बनोगे। और आदमी भी बन गए ना, और देख ही रहे हो आप, आदमी आदमी तो सब एक से ही हैं, तो क्या वैसे आदमी बनना चाहते हैं? भगवान ने आदमी बनाया, ये बुद्धि दी, ऐसे माता पिता वातावरण विद्या गुरु ये सब प्राप्त हुए, अब भी जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। नारायण वो तो आत्महत्यारा है, सारी सामग्री भगवान ने आपको सुलभ करा दी और फिर भी आप उसका फायदा नहीं उठाते हो, तो हमारी गलती है, ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। इस प्रकार से ये केनोपनिषद का प्रसंग यहां पूरा हो जाता है। अब धन्यवाद किसको करें, सब परमात्मा की ही लीला है, ये अवसर आप लोगों ने दिया उसके लिए अवश्य धन्यवाद है। जो समय परमात्मा की चर्चा में चला जाए वही बढ़िया है। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्णमद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम नारायण।